ओम शांति। आबू की इस पावन धरा पर, ऋषि मुनियों की इस तपोभूमि पर और ज्ञान सरोवर के अलौकिक, आध्यात्मिक और अद्भुत परिसर में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सब नेशनल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा न्याय जगत की अलौकिक प्रगति। आज लोकतंत्र के इस पिल्लर में को सशक्तिकरण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आध्यात्मिकता की शक्ति का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। 11 सितंबर 1893 में शिकागो की जब धर्म संसद में एक 30 वर्ष का नौजवान खड़ा होकर बोलता है, अमेरिका निवासी मेरे भाइयों और बहनों, तो 3 मिनट तक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तो ऐसी ही आध्यात्मिक शक्ति, ऐसी ही अलौकिक शक्ति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 88 वर्षों से हर व्यक्ति में भरने की प्रयास में है। तो भाइयों बहनों, हम परिस्थितियों के साथ आंख मिलाकर ये कह सकें, इसके बारे में एक छोटी सी कविता मैं कहूंगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है बस अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ओम शांति। अभी मैं आप सभी का, अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए बुलाता हूँ सभी को स्टेज पर। बीके मुकेश आहूजा जी, श्रीमान मुकेश आहूजा जी पधारे, स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बीके कविता बहन चंडीगढ़ से अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शशिकांता मिश्रा, जोरदार स्वागत करें अपने मुख्य अतिथि का। जज हैं हाईकोर्ट के, ओडिशा हाईकोर्ट जज। बीके लता बहन नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग। राजयोगिनी बीके लक्ष्मी बहन डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी सोनीपत रिट्रीट सेंटर से आप सभी का भी स्वागत है। बीके निशा बहन द्वारका सेंटर से राजयोगा टीचर और जूरिस्ट विंग की सदस्य हैं। राजयोगिनी बीके प्रभा बहन जी डायरेक्टर ज्ञान सरोवर माउंट आबू, आप सबका भी स्वागत है। अब मेरा बहनों से निवेदन है कि बैज लगाकर और प्लांट देकर हमारे मुख्य अतिथियों का और अतिथियों का स्वागत करें। बीके अनुष बहन, नेहा बहन, रिया बहन, मंजू बहन, बहने स्वागत करेंगे हमारे। कितना ही मनोहर दृश्य है ये, हमारे अतिथियों का स्वागत हो रहा है, आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्रीकांता मिश्रा जी का, राजयोगिनी बीके लता दीदी का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जूरिस्ट विंग की, उनका स्वागत हो रहा है। और बहनें प्लांट देकर भी स्वागत कर रही हैं। ये एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक संदेश भी दिया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। मुकेश आहूजा जी का भी स्वागत है, बी के निहा निशा बहन द्वारका, उनका भी जोरदार स्वागत है। आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए इस स्वागत के उपलक्ष में। और मेरा एक आप सभी से निवेदन है, थोड़ा से नजदीक आकर बैठेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, सभा की शोभा और भी अच्छी बन जाएगी। कार्यक्रम की शोभा हमारे मुख्य अतिथि और अतिथिगण हैं जो सब स्टेज पर विराजमान हो गए हैं, और कार्यक्रम की शोभा आप सभी से है। अब मैं वेलकम सॉन्ग के लिए बीके हल्दर भाई ग्लोबल हॉस्पिटल को आमंत्रित करता हूं, वो स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे आप सभी के सामने। बीके हल्दर भाई, गीत के बोल हैं, प्रभु ने बुलाया आपको, आपका स्वागत, शुभ आगमन, ज्ञान सरोवर परिसर में आपका अभिनंदन अभिवादन। आप सभी विधि वेताओं का, विधि व्यवसायियों का इस जूरिस्ट विंग में स्वागत है। हल्दर भाई ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं देते हैं और उनका ये एक शौक है गाना गाने का। गाने से उमंग उत्साह बढ़ता है, रक्त का संचार होता है, और आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए इनके स्वागत में।
ओम शांति। आप सबको यहाँ किसने बुलाया? आप सबको किसने बुलाया? महान हस्तियों ने? किसने बुलाया? बोलिए जोर से, बाबा ने बुलाया। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां अपने आप के लिए। ज्ञान सरोवर बड़ा मनोहर, ये प्यारा स्नेह मिलन, सुंदर अवसर है मिला, पुलकित है तन मन, पुलकित है तन मन।
प्रभु ने बुलाया आपको, आपका हुआ शुभ आगमन, ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन, ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन। प्रभु ने बुलाया आपको, आपका हुआ शुभ आगमन, ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन, ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन। आगुवरावली पर्वत न्याई दो यहाँ जो आए, आगुवरावली पर्वत न्याय विद यहाँ आए, प्यार प्रभु वे आ गए, स्वागत को मन ललचाए, आपका हुआ है आना, दिल हुआ दीवाना, शुक्रिया धन्यवाद, दिल का है कहना, शुभागमन में आपके पुलकित है ये तन मन, ज्ञान सरोवर में परिसर में आप सबका अभिवादन, ज्ञान सरोवर ये परिसर में अब सबका अभिवादन।
जो दस तालियां बजे दीदी जी हमारे पहुंच चुके हैं।
सत्यमेव जयते अहिंसा परमो धर्म है। सत्यमेव जयते अहिंसा परमो धर्म है। प्रेम दया और शांति से अपना हो हर कर्म है। अद्भुत ऊर्जा है वहाँ, आध्यात्मिकता हो जहाँ, अध्यात्म को अपना कर भरपूर हो यहाँ। प्रभु के घर में आए हो प्यारे प्रभु के नंदन, ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन। ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन। आध्यात्मिक सशक्तिकरण से अलौकिक प्रगति हो। आध्यात्मिक सशक्तिकरण से अलौकिक प्रगति हो। न्यायालय के न्याय विदों न्याय जगत की प्रगति हो। यही शुभ कामनाओ प्यारे प्रभु रचना, आपको प्रभु ने यही सेवा में चुना। न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता अध्यात्म है सहज साधन। ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन। ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन। प्रभु ने बुलाया आपको, आपका हुआ शुभागमन। ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन। ज्ञान सरोवर ये परिसर में आप सबका अभिवादन। आप सबका अभिवादन। आप सबका अभिवादन।
बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर भाई जी का। बहुत शानदार गाना गाया जिसमें कि सत्यमेव जयते और अहिंसा परमो धर्म का भी उन्होंने विवरण किया। प्रेम दया और शांति को अपना हर कर्म बनाने के लिए प्रेरणा दी। आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं हल्दर भाई जी के लिए। और मेरा एक निवेदन है, आप सभी जो है सेंटर पॉइंट में आ जाएं सभी, जिससे हॉल की शोभा बढ़ेगी। आप सभी भी बीच में आ जाएं, आप सभी भी बहने भी बीच में आ जाएं। अभी मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में राजयोगिनी प्रभा दीदी जी आई हैं, उनका स्वागत किया जाए प्लांट्स देकर और बैज लगाकर। और राजयोगिनी कविता बहन जी भी पधारी हैं, उनका भी स्वागत किया जाए प्लांट्स और बैज के द्वारा। और आप सबकी तालियां बजती रहें। आज देव भी देख रहे होंगे ऊपर से कि सभी विधिवेता कितने शानदार और मनोहर दृश्य में ये परिसर में कार्य कर रहे हैं। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी फलक और फैनिश को, जो कि आप सभी के सामने स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगी। कुमारी फलक और कुमारी फैनिश, इनका ये गीत के बोल हैं शुभ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी फलक और कुमारी फैनिश, आप सभी ने स्वागत सत्र में स्वागत नृत्य का दर्शन किया। इन कुमारियों ने अभी ही सिल्वर मेडल प्राप्त किया है अपनी कला में बहुत, और बचपन से ही ब्रह्मा कुमारीज में ये से जुड़ी हुई हैं और ये अपनी कलाओं को और आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी फलक। अब मैं वेलकम स्पीच के लिए बीके मुकेश आहूजा जी को आमंत्रित करता हूं स्टेज पर। स्वागत भाषण के लिए मुकेश आहूजा जी पधारें। इनके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा, आपने 1988 में कानून की पढ़ाई पूरी की थी, 36 वर्षों से विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और 7 वर्षों से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लोक अभियोजक निदेशक का पद संभाले हुए थे। इन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट होने के बाद सीनियर मीडिएटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अभी आम जन को तक कानून की पहुंच बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने 1000 से ज्यादा लेक्चर किए हुए हैं जिनका विषय रहा है मन की शांति, आध्यात्मिक सशक्तिकरण और लव एंड लॉ का बैलेंस कैसे जीवन में रखें। तो मैं आमंत्रित करता हूं बीके मुकेश आहूजा जी को।
ओम शांति। थैंक्स प्रदीप भाई जी। एक बार प्रभु ने नारद मुनि जी को कहा कि आप धरती लोक पर जाओ और पता करो कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, और सभी वर्गों के लोगों से पता करना। तो नारद मुनि जी ने कहा ठीक है, मेरे को आप एक दिन का समय दीजिए प्रभु, मैं कल आपको बताता हूं इस बारे में। और नारद मुनि जी धरती लोक पर आए और सभी वर्गों के लोगों से, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, बिजनेसमैन हों, एडवोकेट्स हों, जुडिशियल ऑफिसर्स हों, सभी लोगों से इंटरेक्शन किया और सबसे मिलने के बाद डाटा इकट्ठे किए और अगले दिन जो है प्रभु के पास पहुंच गए। तो प्रभु ने अपनी बात दोहराई कि आप बताइए कि इस धरती लोक पर सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, लेकिन बहुत शॉर्ट में, सिर्फ चार लाइनों में बताइए। उस पर इंद्र शर्मा जी को तो आपने सुना होगा ना चार लाइनों के बारे में। तो नारद मुनि जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, प्रभु इस संसार में सबसे सुखी वकील, प्रभु इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो फीस मिले, हारे तो अपील। तो जो वकील है वो कहीं भी नुकसान में नहीं रहते, चाहे केस हारे चाहे केस जीते। दो चीजें संसार में ऐसी हैं जिसके लिए सतत प्रयास हर आत्मा करती है, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वास्तव में वो दो चीजें सुख और शांति है जिसकी भिखारी इस विश्व की सभी आत्माएं हैं। हालांकि सुख प्राप्त करने के, शांति प्राप्त करने के अपने अपने पैरामीटर्स, अपने अपने मापदंड हैं, लेकिन फिर भी सुख और शांति वो सूक्ष्म चीजें हैं जिनका आधार कोई भी भौतिक वस्तु हो नहीं सकती। आज हम देखते हैं कि संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके पास बहुत रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, रुतबा वगैरह है, लेकिन फिर भी क्या नहीं है उनके पास, आप सब जानते होंगे, सच्ची मन की शांति नहीं है, सच्ची खुशी नहीं है। क्योंकि सच्ची मन की शांति और सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए जो सर्वप्रथम चीज है कि मैं वास्तव में हूं कौन, हूं तो मैं आत्मा लेकिन अपने आप को शरीर समझता हूं। लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझते, अपने सही स्वरूप में स्थित होते हैं, तो स्वतः ही हमें सुख और शांति के वाइब्रेशन मिलने लग जाते हैं। अविनाशी आत्मा को अविनाशी सुख और शांति की प्राप्ति केवल और केवल अविनाशी परमात्मा से ही मिल सकती है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ज्ञान सरोवर के सुंदर, पवित्र, आध्यात्मिक, मनोरम और इस सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर सभागार में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। सर्वप्रथम स्वागत है सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव का, जिनकी प्रेरणा से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और वास्तव में मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आज की जो तारीख है 6/6/2024, ये सभी अपनी बुद्धि रूपी डायरी में नोट कर लें, क्योंकि आप सब बहुत 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 महान आत्माएं हैं जो इस पवित्र धरा पर, इस सर्वोत्तम तीर्थ स्थान पर पहुंची है। क्योंकि इस स्थान पर, इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के लिए भी बहुत ऊंचा भाग्य चाहिए, और निसंदेह पूर्व में आपके किए हुए बहुत अति श्रेष्ठ कर्मों का ये फल है जो आप सब यहां बैठे हैं। तो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शिव का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी का, जो डायरेक्टर इस ज्ञान सरोवर माउंट आबू की हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शशि कांता मिश्रा जी, जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, आप यहां पर आए, आपका स्वागत है बहुत बहुत। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहां पर हम सबके सम्मुख आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी और आप भी यहां पर आने का पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारी सीनियर राजयोगा टीचर बीके कविता बहन का, जो आप चंडीगढ़ से आई हैं और मेंबर जूरी स्विंग है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारी आदरणीय राजयोगिनी बीके लता बहन जी का, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरी स्विंग है। मैं स्वागत करता हूं हमारी आदरणीय राजयोगिनी बीके लक्ष्मी बहन का, जो डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी सोनीपत रिट्रीट सेंटर और सोनीपत एग्जीक्यूटिव मेंबर यूएस विंग की हैं। मैं स्वागत करता हूं बीके निशा बहन का, जो खास तौर से इस कॉन्फ्रेंस के लिए न्यू दिल्ली द्वारका से आई हैं। आप राजयोगा टीचर हैं और मेंबर यूएस विंग हैं। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे बीके हल्दर भाई का, जो ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर गीत से हम सबका स्वागत किया। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं कुमारी फलक का, कुमारी फैनिशा का, जिन्होंने बहुत सुंदर नृत्य के साथ हम सबका स्वागत किया। और इन सब के साथ साथ मैं स्वागत करता हूं ऑफ द डायस आप सभी अति महान विभूतियों का, जो भारत के कोने कोने से इस विशेष अवसर पर यहां पधारे हैं। क्योंकि यदि आप ना होते तो इस प्रोग्राम की कोई शोभा नहीं होती, इसलिए आपका बहुत 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 स्वागत है। एक ताली आप इनके लिए भी और अपने लिए भी जरूर बजाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत स्वागत बीके मुकेश आहूजा जी का भी, जिन्होंने सभी का स्वागत कर दिया और हमें बता दिया सबसे सुखी कौन है इस संसार में। सबसे सुखी वकील हैं। अगर केस जीत गए तो फीस है, नहीं तो अपील है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि हर एक में आध्यात्मिक गुण भरने के लिए जो प्रयास ब्रह्मा कुमारी कर रही है, उसमें इन भाई साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आपने भी बहुत सारे लेक्चर्स, हजार से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं पूरे भारत में, और अभी भी ये अनवरत सेवाएं इनकी जारी हैं। अभी मैं बीके कविता बहन चंडीगढ़ को आमंत्रित करता हूं, जो हमारी संस्था के बारे में बताएंगी और जूरिस्ट विंग के बारे में आप सभी को जानकारी देंगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 88 वर्षों से क्या क्या सेवाएं कर रहा है और जूरिस्ट विंग क्या क्या सेवाएं कर रही है, जिससे वकील और जजेस जुड़े हुए हैं। बीके कविता बहन पिछले 1991 से पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी करने के बाद 1989 में ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित हो गई हैं। क्योंकि लॉ ग्रेजुएशन करते हुए इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया ब्रह्मा कुमारीज में, और इन्होंने कई ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रमों में भाग लिया है। आप जो है पॉजिटिव लाइफस्टाइल के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में अपने व्याख्यान विभिन्न स्थानों पर भारत के और विदेशों के दे चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूं बीके कविता बहन जी चंडीगढ़।
ओम शांति। आप ये शब्द बार बार सुनेंगे और आपको बोलने की आदत भी हो जानी चाहिए, इसीलिए एक बार जरा मुस्कुरा कर बोलिए, दांत भी दिखाइए। ओम शांति। एक बार और, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये संस्कार बन जाएगा शांत रहने का, स्थिति को अच्छा रखने का। आपके पास यहाँ 3 दिन है इसी कार्य के लिए, और जिनकी स्थिति अच्छी है वो सबसे ज्यादा अमीर है। रिच पर्सनैलिटी उसी को कहते हैं जो छोटी छोटी बातों में घबराते नहीं हैं। और आज आप सभी जब यहाँ पधारे हैं, आते ही इसकी सुंदरता को देखकर, यहाँ की शांति पवित्रता को देखकर, आपको नेचुरल बात है अच्छा लगा ही होगा। ये सबको लुभाती है, सबको सुहाती है, सबको अच्छा लगता ही है। कहने को हम जूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी यहाँ विशेष रूप से अपने मन की अच्छी स्थिति के साथ कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं, ताकि मन की शांति आपका नेचुरल स्वभाव बन जाए। ये तो जानबूझकर हम अलग अलग वर्गों को इसलिए बुलाते हैं ताकि लाइक माइंडेड पीपल हों, तो उनकी बातचीत और ये सब उनका स्टैंडर्ड एक जैसा हो, बातचीत कर सके उस बारे में। लेकिन यहाँ आप अपनी जुडिशरी के बारे में बातें नहीं करेंगे, यहाँ आप जब भी बातें करेंगे साइलेंस हमारा सच्चा मित्र कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमारे आदरणीय मुकेश भाई जी ने सभी का एक एक का नाम लेकर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, तो मैं फिर से नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो मंच पर विराजमान है हमारे आदरणीय भाई जस्टिस शशिकांत जी सहित, शशिकांत मिश्रा जी सहित, आप सभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवार आत्माएं हैं। इस समाज में विशेष परिवर्तन लाने के लिए, इस विश्व में कुछ नया करने के लिए बचपन से आप सबने सपने देखे हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहे हैं। जब मैं इस संस्था में पहली बार आई थी 1984 में, जब हम जुड़े थे अपने माता पिता के साथ, तो उन दिनों पंजाब में बहुत आतंकवाद था, इसीलिए थोड़ा सा लेट, यानी यहाँ हेडक्वार्टर में 86 में पहली बार आना हुआ। और यहाँ आई तो बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए थे, पांडव भवन जो आप देखेंगे बस वही एक बिल्डिंग, वही एक कैंपस था हमारा, पांडव भवन, ओम शांति भवन। वहाँ एक बड़ा अच्छा स्लोगन था, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी सारे विश्व का भला सोचें लेकिन पहला कदम खुद से शुरुआत कर दें, बिल्कुल लोकल लेवल, लोकल लेवल मैं खुद हूँ, तो अपने आप से हम शुरुआत कर दें, एक कदम आप बढ़ाएंगे तो हजार कदम आपके साथी, आपके साथ निभाने वाले उसमें जुड़ते जाएंगे। और हमारे आदरणीय रमेश शाह भाई जी जिन्होंने इस विंग की शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी बात बताई थी कि मुझे लगा कि क्यों वकीलों और जजों को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के महावाक्य जो अव्यक्त वाणी में हम सब ने सुने हैं, तो वो बहुत अच्छी बात थी और उसको ठीक रखने के लिए इस विंग की शुरुआत की गई थी। भगवान के महावाक्य थे कि तुम सब अपने लिए, अपनी गलतियां करके अपने लिए तो वकील बन जाते हो और दूसरों के लिए जज बन जाते हो। जज बन जाना अर्थात आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उनके लिए आप फाइनल जजमेंट देते हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारे ये एटिकेट, तुम्हारे ये मैनर्स, ये ठीक नहीं है, या ये ठीक है, दूसरों के लिए जज बन गए। और अपनी 10 बार 100 बार गलती करके भी सोच लेते हैं इतना तो चलता ही है, इतना तो होगा ही, इतना कौन सुधरा है, इतना तो करना सहज करना पड़ेगा ना, ये तो मुश्किल है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अपने लिए हम क्या बन गए, वकील, और दूसरों के लिए जज। अब इस बात को थोड़ा सा सुधार कर लें कि दूसरा कोई कुछ भी करे हम उसके लिए थोड़ी सी वकालत कर लें, कोई बात नहीं, इसका अपना पुराना संस्कार है, ये कोई अभी थोड़ी, पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। क्या हुआ अगर उसने गुस्सा किया, तो जरूर कोई परेशानी होगी, यहाँ कुछ गार्बेज पहले से भरा हुआ होगा, और खुद गलती करके अपने लिए जजमेंट दें कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, इसके बजाय ये करना चाहिए, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह की कुछ बुनियादी बातें जो हमारे बहुत आदरणीय भ्राता रमेश शाह जी ने सोची, उन्होंने निर्णय किया, और इस तरह से जब इस संस्था में अनेक विंग्स की शुरुआत हुई थी, इस संस्था का नाम आपने सुना होगा, बहुत बार सुना है, अधिकतर लोग बोलते हैं ओम शांति वाले या ब्रह्मा कुमारी वाले या ब्रह्मा कुमारियां, इसका पूरा नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यानी इसकी शुरुआत ईश्वर ने की है, ईश्वर के द्वारा स्थापित किया गया स्कूल, सारे विश्व के लिए स्कूल है ये, जिसमें नैतिकता की आध्यात्मिकता की पढ़ाई खुले दिल से पढ़ाई जाती है और सबके लिए पढ़ाई जाती है। सभी यहाँ इकट्ठे बैठकर पढ़ सकते हैं, हर वर्ग वाले, हर उम्र वाले, हर जाति धर्म वाले, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईश्वर आत्माओं को पढ़ाते हैं, वो शरीरों को या वर्ग या उम्र या धन या पोस्ट देखकर नहीं पढ़ाते हैं, वो आत्माओं का सशक्तिकरण करते हैं, आत्माओं का प्योरिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये संस्था की शुरुआत 1936 से यहाँ नहीं, उस वक्त भारत इकट्ठा था, तो हैदराबाद सिंध, फिर कराची, फिर उसके बाद माउंट आबू शिफ्ट हुए, तो इसकी शुरुआत हैदराबाद सिंध से हुई थी। और वो छोटा सा विश्व परिवर्तक आत्माओं का ग्रुप कराची होते हुए भारत में 1950 में आया था, ये माउंट आबू लाइट हाउस बन गया, यहीं से सब तरफ लाइट फैली है और लगभग 140 देशों में ये लाइट फैलती गई आध्यात्मिकता की और सब तरफ कल्याण के स्वर गूंजने लगे। उसमें से सेवा और आगे बढ़े, अच्छी तरह बढ़े, जैसे विश्व में सेवा हो इसी तरह कोई वर्ग अछूता ना रह जाए। तो इस तरह के आप सोच नहीं सकते कि इवन दिव्यांग भी, उनकी सेवा के लिए भी सोचा गया, जिनको पहले विकलांग कह देते थे, डिसेबल्ड कहते थे, अब उनको स्पेशली एबल्ड कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, क्योंकि स्वमान देना जरूरी है जिसको आप ऊंचा चढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह छोटे से छोटे पोस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी पोस्ट तक हर वर्ग का ध्यान रखा गया और उसी में से हम सब आप जूरिस्ट विंग, जिसने 1990 में लगभग इसकी शुरुआत हो गई थी, 84 में जब इसका स्वप्न देखा गया था, थोड़ा सा छोटा सा ग्रुप था और उसमें कुछ वकील, बहुत मुश्किल से तो वकीलों को आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आता है, आप देखिए सबसे ज्यादा बिजी वकील और डॉक्टर ही मिलते हैं। 91 में जब ये जमीन ली गई थी इस साल गांव की, मैं वो बात बताने लगी थी, तो जूरिस्ट विंग की मीटिंग चल रही थी और जूरिस्ट विंग के ही भाई बहन यहाँ आए थे झंडा लहराने के लिए, और आदरणीय दादी ने बड़े खुले दिल से, हाँ ये तालियां बजाने वाली बात है क्योंकि आप सबसे शुरुआत हुई थी इस जमीन का, जब डिसाइड हुआ और सबसे पहले ये वर्ग वहां था, मीटिंग हो रही थी, तो आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने सबको कहा कि सभी चलेंगे और बस में भरकर सब आए, यहाँ झंडा लहराया गया था और उसके बाद ये यहाँ इसकी शिलान्यास हुआ और शुरुआत हो गई थी बनने की। शिलान्यास के समय भी डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी पधारे थे, तो आप जूरिस्ट विंग वालों ने इसका नाम तब सालगांव ही बोलते थे क्योंकि ज्ञान सरोवर बना नहीं था, तो इसकी बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई और उसके बाद से हर वर्ष यहाँ जूरिस्ट विंग के भाई बहन पधारते हैं और उनमें से बहुत से ऐसे रत्न निकले हैं, जैसे हमारे राठी साहब बैठे हैं, जस्टिस ईश्वरैया जी हैं, आप मिलेंगे, सभी से मिलेंगे इन 3 दिन में, तो इस तरह के हीरे निकले जिन्होंने बहुत बहुत सेवाओं को आगे बढ़ाया, ये सोचकर कि इन सभी को बहुत शांति की जरूरत है। तो मुझे भी लगा कि वकील या जज बनने के लिए ये सारी बातें जो पढ़ाई हम करते हैं और जितनी मेहनत हम करते हैं, उस सारी मेहनत का 1% अटेंशन रखें, अगर हम फरिश्ता बनने के लिए, शांत बनने के लिए ओनली 1% अटेंशन, तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो आप सब यहाँ पधारे, इस सुंदर परिसर में, इस सुंदर वातावरण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन तो है, लेकिन साथ साथ ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन 3 दिनों में कोई सेशन, कोई क्लास मिस ना करें, विशेष रूप से सुबह 6:30 बजे वाली, आपका अपने आप दिल करेगा उठने को, यहाँ वातावरण ही ऐसा है कि रात को 10 बजे आपको लगेगा सो ही जाना चाहिए, रोज लंच के बाद थोड़ी सी देर रेस्ट अवश्य मिलेगा, अब ये ना कहना हमें तो आदत नहीं है सोने की, और रात को जागने की आदत है, थोड़ा सा ही सुधार करना है बस। आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी सुबह उठेंगे, अमृत वेले भी योग यहाँ आकर बैठकर करेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच कितना अमृत बरसता है। तो आप सभी का सौभाग्य है और हम सब का ये स्नेह मिलन हो रहा है। तो इस संस्था में आप सब जो कहने को नारी सशक्तिकरण के लिए शुरू हुई थी, उस वक्त जब बहुत ही दबा हुआ कुचला हुआ वर्ग था, महिला वर्ग नारी वर्ग, उस मातृशक्ति को हमारे आदि देव ब्रह्मा बाबा ने जागृत किया, शुरुआत की और उन्होंने ही सब तरफ आगे बढ़कर हिस्सा लिया। आज जितने भी सेवा केंद्र है, हजारों हजारों सेवा केंद्र भारत में सबसे ज्यादा है, 30,000 तो छोटे छोटे संस्थाएं सेवा केंद्र जिसको हम बीके पाठशाला कहते हैं, 30,000 से अधिक हैं, और इसी तरह से लगभग 7,000 सेवा केंद्र उप सेवा केंद्र है जो सर्टिफाइड है, जहां हमारी आदरणीय बड़ी बहनों जैसी बहनें रहकर सब संभालती हैं। तो उन सभी में एक जैसा ज्ञान दिया जाता है, एक जैसी बुद्धि, एक जैसी दिव्यता, एक जैसा ज्ञान, एक जैसा योग सिखाया जाता है और यही विशेषता है। इसी वजह से हम उम्मीद रखते हैं कि एक जैसे देवता तैयार होंगे। तो आप सभी को यहाँ देवत्व की ओर अपना कदम बढ़ाने की बहुत बहुत मुबारक हो, हार्दिक बधाई हो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बीके कविता दीदी का। सबसे पहले तो आप सब कविता दीदी का स्वागत करें अपनी तालियों से कि जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब एक दिव्य शक्ति ने ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाने का निर्णय लिया है। आप सब स्वागत करें इनका। और बहन जी ने कितने सहज शब्दों में बताया कि आध्यात्मिकता का मार्ग हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लिए है। इसमें किसी के लिए पक्षपात नहीं, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। बहन जी ने कितनी सहजता से बताया कि आध्यात्मिकता का मार्ग आत्मचिंतन का मार्ग है, आत्मनिरीक्षण का मार्ग है, आत्म संशोधन का मार्ग है। इसमें किसी और का वकील बनने के लिए, अपना वकील बनने के लिए और दूसरों के लिए जज बनने के लिए की जरूरत नहीं है, अपना जज स्वयं बने। कितना सहज रीति से बहन जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी के सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूं, जो 2024-2023 के सेवाओं की झलकियां आप सबके सामने वीडियो के द्वारा पेश की जाएंगी, जो कि संबंधित कविता बहन जी ने भी बताया है कि ब्रह्मा कुमारीज ने जूरिस्ट विंग ने क्या क्या सेवाएं की हैं। तो 2023 और 2024 की सेवाओं की एक झलकी आप देखेंगे।
ओम शांति। मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके भारत एवं 140 अन्य देशों में 4,000 से भी अधिक ब्रांचेस हैं। इस संस्था का उद्देश्य है आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के द्वारा एक ऐसा समाज जो स्वस्थ समाज हो, स्वच्छ सुसंस्कृत समाज हो, ताकि मानव मात्र के अंदर सच्चा सुख, सच्ची शांति और खुशहाल वाला जीवन जीने की कला आ जाए, सभी समाज के वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए आध्यात्मिकता के द्वारा, ताकि वे अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी अपने जीवन को खुशहाल बना सके, मन की शक्ति उनके जीवन में आ जाए। तो ब्रह्मा कुमारी और उससे जुड़ी हुई कंसर्न शाखा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत सभी वर्गों के लिए भिन्न भिन्न विंग्स बनाए गए हैं, जैसे कि मेडिकल विंग, एजुकेशनल विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग, यूथ विंग, वुमेन विंग, जूरिस्ट विंग। तो हमें गर्व है कि जूरिस्ट विंग भी, जिसमें जजेस, लॉयर्स, प्रिंसिपल, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स आदि, अन्य लीगल ऑफिसर्स, सीए, सीएस, सीएमएस, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आदि आदि लाभ लेते रहते हैं और उनके लिए विशेष हमारे कई प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार आदि भी होते रहते हैं, क्योंकि आज जीवन में सभी को बड़ी आवश्यकता है कि उनका प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस्ड रहे और सदा ही स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। उसके लिए हम मेडिटेशन भी सिखाते हैं और साथ साथ जीवन की सच्चाई क्या है और उस बात को समझने से, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से ही संभव हो सकता है, तो हम सबके अंदर आप सबके लिए वह शुभ भावना और कामना है कि आप अवश्य इसका लाभ लेंगे और आपको हम निमंत्रण देते हैं कि अवश्य थोड़ा सा समय निकाल कर भी अपने क्षेत्र व माउंट आबू हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, वहां पर जो प्रोग्राम्स चलते हैं आप पधारिए और अपने जीवन में उसका लाभ लीजिए। इसका आगे के प्रोग्राम्स आपको इसी वीडियो के अंदर सुनाए और दिखाए जाएंगे।
हम 3,500 एडवोकेट्स और जजेस और एडवोकेट्स और चार्टर अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के लिए 12 से 16 सितंबर में रख रहे हैं। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम हमारा ओआरसी ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में अरेंज किया है, जिसमें भी ये सभी लोगों का इनविटेशन, सभी लोगों को इनविटेशन है। आपको और भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक और गेट टुगेदर प्रोग्राम हमने पांडव भवन करोल बाग न्यू दिल्ली में अरेंज किया है। वहां पे भी हमने दिल्ली के ही अंतर्गत आए हुए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया हुआ है। इसे प्रकार स्विंग अनेक प्रोग्राम समय समय पर स्थान स्थानों पर पूरे भारतवर्ष में करती रहती है। वैसे तो जूरिस्ट विंग ने नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम समय अनुसार स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण सभी को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सभी के जीवन में दुख अशांति बहुत ही बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन सभी से उभरने के लिए आध्यात्मिक एम्पावरमेंट बहुत ही आवश्यक है। ओम शांति।
आप सभी ने देखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा बनाई गई जूरिस्ट विंग विभिन्न प्रकार की सेवाएं कर रही है और हमारी चेयरपर्सन पुष्पा दीदी ने, नेशनल कोऑर्डिनेटर लता दीदी ने बड़े ही अनुपम ढंग से आप सभी को समझाया बताया और भविष्य में होने वाले प्रोग्रामों के लिए आप सभी को आमंत्रित भी किया है। तो आप सभी आने के लिए तैयार हैं, हाथ खड़े करूं। सितंबर में और अक्टूबर में होने वाले कार्यक्रमों में आप सभी का स्वागत है पहले से ही। और मैं आप सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, बाहर जो भी आप सभी के पहचान वाले जो भी साथी भाई बहने आए हुए हैं उनको बुला लीजिए, आज आप सबको गॉडली गिफ्ट भी दी जाएगी इस कार्यक्रम के बाद, तो आप सब उनको बुला लीजिए फोन करके कैसे भी करके। और अभी मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी कायरा और कुमारी रहनिशा को, जो आप सभी के बीच स्वागत नृत्य पेश करेंगी। और गीत के बोल हैं, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। कुमारी, ये कुमारियां तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ती हैं, लेकिन अभी से अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन आप सभी के सामने कर रही हैं, कुमारी कायरा और कुमारी रहनिशा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी कायरा और कुमारी रहनिशा का, बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया, प्रभु के प्यार में, प्रभु के परिवार में आप सबका स्वागत किया। आप सब इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपने व्याख्यान आप सबके सामने पेश करेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्रीकांता मिश्रा, जज हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ओडिशा कटक। और आपके बारे में बताना चाहूंगा, आप बहुत ही सुप्रसिद्ध परिवार से संबंध रखते हैं। 1996 में आपने अधिवक्ता के रूप में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। सीनियर अधिवक्ता श्री नरेंद्र मिश्रा के सानिध्य में रहकर आपने कानूनी दांवपेच सीखे हैं। 2003 में इन्होंने अपनी स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2009 में आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया। जज रहते हुए आपने कानून को गरीबों तक पहुंचाया। लोग मानते हैं कि कानून की पहुंच जो है अमीरों तक है, लेकिन आपके कई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं जो ओडिशा हाईकोर्ट में रहते हुए आपने दिए हैं, जो वकीलों के लिए एक उदाहरण है। वकीलों उनको पेश करके अपने केस में अपने पक्ष में निर्णय करवाते हैं। मैं स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं ऑनरेबल जस्टिस न्याय श्रीकांता मिश्रा, जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक।
ओम शांति. At the outset, I would bow down before the Almighty, the supreme power that governs this universe, is present in the smallest cell of our body and the biggest galaxies that we see, the supernovas, the Milky Ways and what not. I bow down before the souls present here, the spiritually advanced souls present on the dais, the divine souls present off the dais. I bow down to you and specially to the divinity in you. Each one of you, as I have understood with my little intellect, is just a reflection of the supreme power. So that is why I must begin by bowing down before the divinity before you. I must tell you, I must confess that this being my first visit to Mount Abu, this is a place where I've always wanted to come. In fact, last year also, Nathmal Bhai had asked me to come because of certain preoccupations. I was unable to come. And this time, I'm lucky to have been invited here. Ever since I stepped foot on this sacred and spiritually vibrant land, I must tell you, I have been overwhelmed. Overwhelmed by these spiritual vibrations that reach me, that make my heart calm, that reduce the agitations of my mind. It has been only 4 hours. And I wish I could stay here for long. Nevertheless, coming back to the topic, I've been given a task, and before I go to the topic proper, I must again share with you something. Some time back, maybe 6 months or a year back, when I was having an interaction with Nathmal Bhai in my chamber, I had asked him about the jurist wing. I mean, what is it about? He said that, don't worry, we will invite you to a program so that you will have a first-hand experience of what exactly is our purpose. And in fact, I had been to one of the programs near Katak, a place called Phulnakhara, where you have an ashram, beautifully managed, maintained ashram, where when I looked at the audience, I found all the senior, junior lawyers present there, and not only that, some advocates, clerks were also there. And what I have been told by Nathmal Bhai, and after reading some of your literature, that your aim, and he put it in very simple terms, he said, the people have tremendous faith on judiciary. It is almost like, you know, the last resort for many. So, it is imperative that judiciary is spiritualized. That is what he told me. Well, initially I couldn't understand, I must confess, but slowly, because of my repeated interactions with him, I have been able to understand a little about it. Whatever I am going to say today, please, I don't have that audacity to say that I will be saying something which you do not know. I will be saying that which I have understood from the topic that has been assigned for this year's national conference. The topic being spiritual empowerment of legal fraternity for ethereal progress. Actually, I tried to understand what is the meaning of it. And as judges, you know, we tend to dissect words. Each word we will have to cut it. Judges, everything, we will try to find out what is the interpretation. Why is it mentioned here shall? Why not may? Why not and? Why not or? This is our training. So, I also did the same thing. Spiritual empowerment of legal fraternity for ethereal progress. Here, what I found, as a layman, I don't claim much knowledge, but as a layman, of course with my training as a judge, that the target group is the legal fraternity. Now, and what do we mean by legal fraternity? normally we usually we refer to the legal fraternity as including only lawyers, but here as I find you have given an extended meaning to it, and rightly so. There are lawyers, there are judges, there are cost accountants, there are chartered accountants, there are law teachers, there are tax professionals. So you have given an extended meaning. So this is the target group. And what is the methodology that is to be adopted? Is spiritual empowerment. Now for a layman like me, and going further, I will tell you, as a judge, there was a case before me of a person who had retired 25 years ago. 25 years ago, and he was not even being given the provisional pension. He was paralytic, paralyzed, completely bedridden. And you know why it was not given to him? Because he was unable to sign. This is the reason cited in the original document of rejection. Anyway, looking at the law, I decided that case. I was reminded instantly of Nathmal Bhai's statement that, you see, it is the last resort of people, judiciary. Having said so, I will go to the next aspect, which is spiritual empowerment. What I understand of spiritual empowerment. Now, what does empowerment mean? The word empowerment, loosely translated, would mean conferment of power. Conferment of, some kind of a power by which a person develops. Here the reference is to spiritual power. As you all know, behind this gross material world, there is an underlying, entity, which we called spirit, or the spiritual side of it. There is matter and there is spirit. Now, unless this we are told and we have read, we have heard from great souls, that without this spirit or the spiritual power, nothing can survive. Let us take the example of a dead man. If you look at a dead body and compare it with yourself, you will find everything is the same. The eyes are the same, ears are the same, everything is the same. Oh, but there's a major difference. And of course that difference is the absence of life principle. And the life principle, the divinity in us, the soul, or whatever we call it, whatever name we may give it, I will call it divinity. That governs the life principle. And that is the difference. Ordinary man is not conscious of it. We as ordinary, as somebody said, probably sir said at the beginning, that we are body conscious. We are not soul conscious. We are more engrossed in matter, not in the spirit behind it. And this is the fundamental problem. So making somebody spiritually, empowering somebody spiritually would mean making him conscious of the divinity within himself. This is what I feel. That you have a soul, be conscious of it. And I am reminded of the saying of Swami Vivekananda. He said, what right does a man have to say that he is a soul if he does not see it, feel it? So, to be conscious of the divinity within us is the only spiritual empowerment. And the objective, as you have said, ethereal progress. I tried to look up the dictionary to get out the meaning of this word ethereal. Now ethereal, as you all know, loosely again translated, would mean something, light, something delicate, something that is intangible, cannot feel it with the senses, which relates to, heaven, spirit, this kind of things. So again, it is the same thing. So when we say ethereal progress, what do we mean? We are referring to the inner development of a person. We are not referring to the physical, the material wealth of a person. But we are referring to the development that comes about in his personality, inner personality, because of being conscious of the divinity in him. Let me put it again, because of spiritual empowerment, this person, this professional, who for the present context, who in the present context would be a legal professional, including judges and lawyers, everybody, so he becomes an evolved person, he evolves, there is a transformation, but that transformation is not outside. Outwardly he may be the same person, but inwardly there would have been a sea change in him. So this is the ethereal progress, whatever little I have understood. I may be wrong, but this is what I have understood. So let us discuss it in detail. So let us discuss this. Now, as I have said, legal fraternity, as you all know, I have said, it relates to lawyers, judges, all those who are associated directly or indirectly with the justice delivery system, or what we call, let us call it judiciary. It is one of the three pillars of democracy under the Indian Constitution, as we know. Now, the strength and success of a parliamentary democracy lies in the strength and the effective functioning of judiciary. The independence of judiciary, of course, I will not get into that, which is also said, as sir will understand, the basic feature of the Constitution. But we are not going to go into that. How effectively the judiciary functions, and what is the function of judiciary? Again, we have to go back to the Constitution. To ensure justice to the people. This is very important. Justice. And in a sense, justice is equated with dharma. Righteousness. So, this legal fraternity, being spiritualized, would be more, you know, they will be more able to achieve the constitutional goal of rendering justice. That is why it is very, very important that the legal fraternity or the judiciary should be spiritualized or made conscious of its spiritual stature. Now, how can one enhance one's capabilities? On the material level, supposing somebody wants to be a good lawyer. And I am reminded of a small joke as he started with that Vakil Sukhi Hota Hai appeal. I am reminded of another joke just now. Who is a good lawyer? A good lawyer is he one who knows the law. But no, a better lawyer is he who knows the judge. I was a lawyer that side. So naturally this will be applicable to me. I have come to this side now. Anyway, so when a lawyer wants to grow, wants to be a better lawyer, what does he do? He has to read. He has to make constant, you know, endeavor. He has to study. He has to look at his seniors. And you actually learn more from your seniors than from the books. So, there's a constant, you know, learning. But, you know, however effective these methods may be, they will act only upon your intellect, not your personality. Sir, you will agree with me. I may be an expert in civil law, or criminal law, or constitutional law. But that may have absolutely no impact on my personality. Let me put it rather bluntly. An evil person, a person whom we generally call a bad person, he can be a good lawyer by his study. Which means, whatever his effort has been to enhance his own capabilities has acted only upon his intellect at a superficial level. It has not percolated into his personality. That is why he remains a bad person, maybe a good lawyer. But if he connects to the divine within him, through whatever methods, if he can remember, if he can remind himself now and again, I am not just a body, I am somebody else, there is a spirit behind me. The very simple thing, today I put something in my mouth, the next moment I forget about it. The complicated process that it goes through I have absolutely no control over it. And yet I claim that I am this, I am that. To what lengths the puny ego of a man can go, I sometimes wonder. So, if that very lawyer becomes conscious of his divinity, then not only will he become a good lawyer, but he will also be a good person, inwardly. But when it comes to judges, I have a different view. And I'll be again very blunt. A bad person cannot be a good judge. Impossible. A person who is inherently bad, who does not see the, you know, who does not have the innate sense of fairness within him, he can never render justice. And unless he renders justice, he cannot be called a good judge. Anyway, now the question is it necessary for a legal professional to be spiritually oriented? Is it necessary? He may say, no, I am earning money. I have 5 BMWs. I have, 20 plots of land and all that. But then, let me ask him a question. Supposing he is standing before me and I ask him, you may be having a lot of money, you may be having a lot of cases, you may have a lot of name, fame, whatever. But do you have peace of mind? Can you say that your bank balance is a guarantee to your peace of mind? So, when your bank balance grows, your peace of mind also grows. Can you say that? It is like this, in physics, though I am not a science student, but I had science till my intermediate. We were taught a concept of center of gravity. You can very easily know we have a center of gravity fixed. That is why we are balanced. We don't fall down. When we have to climb a gradient, then we have to lean forward. Why do we do it? We do it unconsciously to balance the center of gravity. Now, there are persons who believe their center of gravity is in a BMW car or in so much of money. Now, for them, what will happen? There will never be any peace of mind. And so, more often than not, what we find is that not only, they may also sometimes adopt unethical and immoral means. Life, as we know, is not a bed of roses. It is never a bed of roses. If there is happiness, there is sorrow. If there is pleasure, there is pain. If there is good health, there is also ill health. So we have to encounter these thorns on our paths, inevitable as they may be. So this gentleman who believes that his happiness lies in his wealth, in his name and fame, when he is also subjected to these pairs of opposites, as we call it, he cannot buy a constant level of happiness from any store. He cannot do that. Like any other human being, he will be subjected to the pairs of opposites. That is where he loses his balance and peace of mind. But this will happen only if he is materialistically oriented. Only if his thinking is in terms of money, name, fame. But the moment, and because at that moment what happens is he is disconnected from his true self, from the divine within him. This does not augur well for the society. Because in such a state of mind and inner personality, he can never be a useful member of the society. So that is why it is necessary for this kind of conferences. And I must express my deep sense of gratitude. I thank you for organizing this kind of conferences. Now, what will happen? I'll go to the last stage of my talk. What will happen if he becomes conscious of the divinity within him? The first change, according to me, at least this is what has happened in my little spiritual endeavor, is that, a sense of humility develops within you. You tend to become humble. There's a sort of sense of surrender within you to a supreme power. So there is some other power operating within me, not me. So you become a little bit, humble, not meek, not, timid. I'm not saying that. You become very strong, but inwardly, you become humble. This humility is the first trait according to me. Now his shallow ego gets reduced. I'll give two or three examples and I'll close. A person without any means has a case and approaches a lawyer. The lawyer, if he is of material bent of mind, he will either refuse to represent the poor client because he knows that he will not get any fees. Or if he does accept the brief, then he will not pay that kind of attention. He will not present the case, prepare or present the case properly before the court. But if he were spiritually oriented, if he were conscious of the divinity within him, then what would he do? He would, irrespective of whether the client pays him or not, he will present it before the court as if the client has paid him. This is the difference, the subtle difference. I can tell you from my personal experience, when I was a lawyer, I was conducting the cases of few workmen, very poor. You know, they used to come to my chamber. There was a case in the labor court, I used to conduct their cases. They didn't have money. They were thrown out of service, so where would they get money? Poor laborers. They used to visit me with a bag full of vegetables. And that man will shyly keep it away in my chamber and asking me, he'll ask permission to me to meet my wife. That he will give. It has so happened that I have paid him 50 rupees because he didn't have the bus fare to go back. I may not have earned money, but I tell you, the blessings that he has given me is where I am today. This has happened because I think I have learned to, or I am trying to learn to be conscious of the divine entity within me. You know, again, I'll come to another example. As a judge, sometimes we get angry with lawyers. There are good lawyers, there are bad lawyers, there are cantankerous lawyers, argumentative lawyers, and there are lawyers who misbehave also. You tend to get angry on them. What? You are arguing in such fashion? All right, I'll show you. Heard? Dismissed. I throw the brief. Then what happens? What happens to the poor litigant who is invisible? But the lawyer is just before me, representing the poor man. Because I get angry on that person, I allow my personal biases and prejudices to take over. So as a judge, I have failed. But if I were spiritually oriented, what would I do? I would not bother about the lawyer at all. I would look at the brief and try to understand what the man wants. What the litigant wants. And I am here for the litigant. I am being paid by the government to dispense justice for the litigant, not to the lawyer. Lawyer is just a means. Sir, a judge is also, after all, a human being. I will tell you, I was hearing an appeal of a lady judge, junior to me, of course, when I was a district judge. She was a magistrate. It was a dowry torture case. Case was palpably false. The magistrate writes in her judgment that there is absolutely no evidence to prove the allegations made by the wife, and yet I hold the husband guilty because crime against women are increasing every day. I was surprised. You see why this has happened. The judge or the magistrate in this case allowed her personal bias to take over. But being a judge, what is my duty, sir? What is my solemn and sacred and holy and pious duty? That I will not be biased or prejudiced. I may not like this case. I may not like this husband. But I cannot. Unless there is evidence, I cannot book him. I cannot sentence him. So this is, you know, reorientation of what we are... In fact, referring to is reorienting your approach, changing your mindset. We are not going to, you know, grow a pair of horns. Nobody will realize, seeing us, what has happened inwardly. I'll tell you, if you connect to the divine, in what way or the other, there are different methods. Sir, your inner transformation will be like, you know, a blast furnace of a steel plant. The entire thing will undergo such a transformation that you will yourself be surprised. And then only the legal fraternity
in such a situation can work to usher in a better society. And that is exactly what the jurist wing of this august organization has been working at. So this national conference is being held to impress upon all the stakeholders, to all the participants, the need to transform our own lives so that you can become true soldiers in this path of rendering justice to the citizens of this country. And I'm sure the participants, not only I am also a participant, we will all learn immensely from the deliberations over the next 2 or 3 days. Before I part, I must once again bow down and offer my deep sense of gratitude for having been invited and on being given this opportunity to speak something before you. Thank you. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस श्रीकांता मिश्रा जी का. मेरा आपसे निवेदन है, एक बार आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर श्रीकांता सर का स्वागत करेंगे एक हाथ हिलाकर. वाह, कितना सुनहरा दृश्य है ये. और जस्टिस साहब ने हमारे न्यायाधिपति जी ने कितना अच्छा अनुभव सुनाया है कि पैसा का महत्व नहीं है जीवन में, दुआओं का महत्व ज्यादा है. और आध्यात्मिकता के द्वारा जो सोल कॉन्शियस हम होते हैं तो उसके द्वारा जो जीवन में परिवर्तन आता है वो हम आंतरिक रूप से अनुभव करते हैं. बाहर रूप से कम दिखाई देगा लेकिन हम आंतरिक रूप से दिखाई देता है हमको. और आपने कितना अच्छा बताया कि एथिक्स वैल्यूज और आध्यात्मिकता का कितना गहरा कनेक्शन है. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जस्टिस श्रीकांता मिश्रा जी का. अब मैं निवेदन करता हूँ ग्रीटिंग्स देने के लिए राजयोगिनी बी के लता दीदी का, जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जूरिस्ट विंग की. आप 30 वर्षों से लीगल प्रोफेशन में से जुड़ी हुई हैं और ब्रह्मा कुमारीज में 1983 से जुड़ी हैं. आपने बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की है और जूरिस्ट विंग को आगे ले जाने के लिए आपने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस का सफलतापूर्वक आयोजन किया है. आदरणीय लता दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग.
सभी बोलेंगे मेरे साथ ओम शांति. बहुत समय से सुन रहे थे इसलिए मैंने सोचा ओम की ध्वनि लगाई जाए. वैसे भी ओम की ध्वनि से फिजिकल और मेंटल बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं. और ओम का अर्थ अर्थात ट्रुथ, अर्थात आत्मा, अर्थात परमात्मा. ओम शब्द में 3 चीजें समाई हुई है, जो सत्य को प्रदर्शित करता है, जो परमात्मा को प्रदर्शित करता है और जो मैं स्वयं आत्मा जो सत्य है उसको भी प्रदर्शित करता है. और शांति तो हम सभी चाहते ही हैं जीवन में. किसी को भी पूछो क्या चाहिए तो कहेंगे सुख शांति आनंद प्रेम ही चाहिए. परमपिता परमात्मा शिव जो हमारे सुप्रीम जस्टिस हैं और मंच पर उपस्थित हमारे सारे महान अनुभूत और आप सभी विशेष सारे भारतवर्ष से पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका अभिनंदन करते हुए मुझे ये बहुत ही आज हर्ष हो रहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस परमात्मा द्वारा रचाई गई थी क्योंकि हम तो सब अपने आप को एक पाठधारी ही मानते हैं, आध्यात्मिकता अर्थात ही कि मैं तो आत्मा हूं आदि से अंत तक, और आदि से अंत तक आत्मा होने के कारण ही, समझने से ही मेरे अंदर एक बहुत बड़ा पावर आता है। तो एम्पावरमेंट होने के लिए देह भान को भूलते हुए हमें अपने आप को आत्मस्थिति में स्थित करना पड़ेगा, और जितना जितना हम आत्मस्थिति में स्थित होते जाते हैं तो वितने वितने एम्पावरमेंट हमारे अंदर होती जाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर ऑलरेडी ओरिजिनल 7 गुण हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ हॉल में भी ये दोनों बाजू में लिखे हुए हैं, यूनिटी, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, पीस, ह्यूमेनिटी, लव। और आज छोटे बच्चे से लेके हमारे बुजुर्गों से भी पूछें कि जीवन में क्या चाहिए, तो सभी यही कहते हैं कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद, यही तो चाहिए। मगर ये चीजें ऐसी नहीं हैं जो हम बाजार में से खरीद के ला सकें। ये चीजें क्यों हर एक चाहता है? क्योंकि ओरिजिनल हमारी क्वालिटी वो है, मगर अभी ड्रामा अनुसार हम सभी अपना इस सृष्टि नाटक मंच पर पार्ट प्ले करते करते अनेक रीति से अनेक प्रकार के अवगुणों को अपनाते हुए हमारे जो गुण हैं वो सारे धूल की छायों के लेयर के पीछे चिपते गए हैं। और इसलिए याद है कि हमारे जीवन में हमें ये होना चाहिए, मगर वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने आप सभी को यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनविटेशन भेजा और आप सभी आए। आप सभी कितने लकी हैं, आप सोचिए कि हमारे भारत की ही जनसंख्या कितनी है और उसमें से आप सिर्फ 400 लोग यहाँ बैठे हैं, तो काउंट करिए हाउ लकी यू आर, कितने लकी हो, है ना? वी आर द लकीएस्ट, वी आर द लकीएस्ट जो हमें चांस मिला यहाँ आने का। हमारे पास रोज इतने फोन आते थे, हमें सेलेक्ट करने में भी एक बहुत मुश्किल होती थी कि किसको बोले हाँ और किसको बोले ना। तो आप रियली में बहुत ही लकी सोल्स हो, और इतने लकी सोल जो परमात्मा सुप्रीम सोल के पास पहुंच गए, अपने अंदर वही सुख, शांति, आनंद, प्रेम की खान को भरने के लिए आपको यहाँ पे 4 दिन में मेडिटेशन भी कराया जाएगा, साथ साथ में शिविर सेशंस भी दिए जाएंगे जिसमें आपको पूरा आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, शक्तियों का परिचय सब दिया जाएगा, कर्म फिलॉसफी सिखाई जाएगी, तो उसके द्वारा आप अपने आप को पहचान पाएंगे। तो मैं तो इतना ही हम्बल रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप सभी प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम अटेंड करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑलरेडी आप इतना ट्रेवल करके, इतना समय निकाल के, इतना खर्चा करके यहाँ तक आई गए हैं, तो क्यों ना आप अपना समय सफल करें, आपकी एनर्जी को सफल करें, क्यों ना आप अपना जो ये इतना खर्चा भी किया है वो भी सफल हो। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी, और इससे क्या होगा, आप भी बेनिफिट होंगे और हम लोगों को भी ये प्रोग्राम सुचारू रूप से चलाने में मदद होगी समय पर समय पर। कल सुबह भी आपका 5:45 बजे शिविर सेशन है, और उससे पहले 6:15 बजे से आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। आप सभी यहाँ पे ही आएंगे, 6:15 बजे से आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ताकि फिजिकल फिटनेस भी आवश्यक है, तो फिजिकल फिटनेस भी मिलेगी आप सभी को, और स्पिरिचुअल फिटनेस तो आपकी सबकी इसके द्वारा होती ही रहेगी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। तो आप टाइम टू टाइम सब आएंगे तो आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस स्पेशली ऑर्गेनाइज ही इस ढंग से की गई है, टॉपिक्स भी सारे ऐसे रखे गए हैं जो पर्सनल लाइफ के साथ साथ, फिजिकल लाइफ के साथ 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 हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। अभी इसमें हम जो प्रोग्राम्स हैं सारे, इट्स नॉट ओनली फॉर विश्व के कल्याण के लिए ही नहीं है, मगर स्वयं के कल्याण के लिए भी है। व्हाट इज स्पिरिचुअल, स्पिरिट एक्चुअल, SPRIT, इजंट इट द स्पेलिंग? द स्पिरिट मीन्स द सोल, एक्चुअली आई एम द स्पिरिट। आप देखिए, माँ के गर्भ में जब तैयार होता है
तो उसके अंदर आत्मा 4 महीने के बाद प्रवेश करती है और तब उसकी हलचल शुरू होती है। और मृत्यु होती है तो भी आत्मा पहले निकल जाती है, तब कहते हैं कि आदमी या तो शरीर छोड़ा है, मर गया है। तो मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली आई एम द सोल, नॉट दिस बॉडी। बॉडी पहले भी है, बॉडी बाद में भी है, मगर आत्मा के निकलने के बाद उसको सिर्फ बॉडी कहा जाएगा, उसको ह्यूमन बीइंग नहीं कहा जाता है, ना उसका कोई नाम लेता है मरने के बाद कि भाई ये लता मर गई, ऐसे नहीं, लता है ये नहीं बोलेंगे, भाई इसके बॉडी को हटाओ, बॉडी को हटाओ बोला जाता है। तो इसीलिए एक्चुअली आई एम द सोल, और आत्मा के अंदर जो 7 गुण है, ज्ञान, शांति, पवित्रता, खुशी, प्रेम, आनंद और शक्तियां, ये जो 7 ओरिजिनल गुण है, इनको हम अपने आप को आत्मा समझने से, पहचानने से हम एम्पावरमेंट हो जाते हैं। शरीर बाहन में रहने से, देह समझने से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे अवगुण आ जाते हैं। और हम देख भी रहे हैं आज विश्व के अंदर, व्हाट इज द रीजन ऑफ क्राइसिस, द रीजन फॉर क्राइसिस इज ऑल दिस वाइसेस, दिस वाइसेस आर ओनली द रीजन फॉर क्राइसिस। अगर हम अपने वाइसेस को त्याग देते हैं, अर्थात आत्मस्मृति में टिक जाते हैं, तो हमारे गुण प्रत्यक्ष होने लगते हैं। आप देखते होंगे यहाँ पे सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब आपको हंसते हुए दिखाई देंगे, कोई भी टेंशन में नहीं मिलेगा, सब लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं, आनंद में हैं, प्रेम में हैं। आप किसी से भी कहीं भी बात कर लो, कोई आपको चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए दिखाई देता है? अभी तो आपको एक ही दिन होगा, ये सब आप अनुभव करते रहेंगे। तो ये स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस स्पेशली हमारे अंदर गुणों को और अच्छी तरह से धारण करने के लिए ये रखा हुआ है। तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, वैसे तो भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से पूरा समझा दिया हमको कि किस तरह से, व्हाट इज स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी फॉर एथरियल प्रोग्रेस, पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया ऑनरेबल जस्टिस शशिकांता मिश्रा जी ने। मगर और भी आप 5 दिन में यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे, तो सिर्फ इतनी ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि समय समय पर आप सब हमें सहयोग देंगे तो हम आपको बहुत कुछ और भी ज्यादा आध्यात्मिकता के बारे में सिखा सकेंगे। और अभी आप सभी को इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा प्रोग्राम बाकी है, उसके बाद सभी को गॉडली गिफ्ट मिलने वाली है। तो जो भी बाहर घूम रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो सभी अंदर आ जाएं, तो गॉडली गिफ्ट आप अपनी स्वागत ले सकेंगे, नहीं तो बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी हॉल में उपस्थित हो जाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बीके लता दीदी का, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग। आपने कितने अच्छे शब्दों में बताया कि आत्मा में जो 7 गुण हैं, उनको हमें कैसे आध्यात्मिकता के द्वारा विकसित करना है। और ये कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, इसमें आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। सुबह सुबह आप लोगों की एक्सरसाइज भी कराई जाया करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आगे राजयोगिनी बी के लक्ष्मी दीदी, जो कि डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारी के सोनीपत रिट्रीट सेंटर की, उनको आमंत्रित करता हूँ। आपके बारे में बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारीज से जुड़ी हुई हैं और 45 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में सरेंडर, समर्पित जीवन जी रही हैं और लोगों को आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित कर रही हैं अपने अनुभवों के द्वारा, अपने व्याख्यानों के द्वारा। आप जूरिस्ट विंग की पंजाब जोन की कोऑर्डिनेटर हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आदरणीय राजयोगिनी बी के लक्ष्मी दीदी को मैं आमंत्रित करता हूं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित अध्यात्म एवं न्याय प्रभाग से जुड़ी हुई महान हस्तियां एवं सभा में उपस्थित न्याय प्रभाग से जुड़े हुए सभी महानुभाव एवं अन्य भाई बहने, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय चारों तरफ का जो वातावरण है, एक तरफ बहुत भौतिक प्रगति है, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, परंतु दूसरी तरफ नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण इंसान का जीवन बहुत दुखी, अशांत, पीड़ित और परेशान है। और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब चारों तरफ से परेशान होता है तो जुडिशरी की तरफ ही इस आशा से निहारता है कि मुझे यहाँ ही सच्चा न्याय और शांति मिलेगी। मनुष्य अदालत को न्याय का मंदिर और न्यायदाताओं को उस मंदिर के देवता समझ करके आपके पास आते हैं। पुराने समय में हम सुनते थे कि पंचों में परमेश्वर का वास होता है, और वो जो निर्णय देते थे तो उस समय चाहे हारने वाला पक्ष है चाहे जीतने वाला पक्ष है, दोनों ही उसे स्वीकार भी करते थे और संतुष्ट भी होते थे। तो सही न्याय के लिए जीवन के अंदर मन का शांत होना बहुत जरूरी है, और अंतरात्मा की आवाज सुनना, इनर रिसोर्सेज की बहुत आवश्यकता है, और ये कार्य केवल स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही संभव है। क्योंकि एक दुखी मन, एक अशांत मन, एक उलझा हुआ मन सही निर्णय नहीं दे सकता है। इसलिए अध्यात्म, जिसका अर्थ बड़ा सहज है, स्टडी ऑफ स्पिरिट, हम सबके अंदर एक आत्मा है और हम सब उस परम आत्मा ईश्वर की संतान हैं और इस जगत में अपना खेल करने आए हैं। इस सहज सी बात को समझ लेना तो उससे आत्मिक प्रेम, सद्भावना और दूसरों के प्रति शुभ भावना पैदा होती है। कभी कभी हम अध्यात्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। जिसे हम रिलीजन समझ रहे हैं, आज के समय में धर्म के नाम पर हम बढ़ते चले गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष और युद्ध की स्थिति आ गई। तो धर्म हमें अलग अलग करता है, लेकिन अध्यात्म हमें जोड़ता है कि हम सब एक ईश्वर की संतान है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, हम सब एक पिता के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है। बार बार यहाँ शब्द सुनने को मिल रहा है और 3 दिन मिलेगा ही, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। इसका मतलब कोई रूढ़िवादी, कोई रिचुअल्स को अदा करना, पूजा पाठ, घंटी बजाना, केवल इतना नहीं है, लेकिन अपने आप के बारे में चिंतन करना कि मैं इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक चेतना हूँ, एक शक्ति हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरा जो निज स्वरूप है वो बहुत शांत है, पवित्र है, और मैं उस पिता की संतान हूँ, और समाज के अंदर जितने भी लोग हैं ये सब भी आत्माएं हैं। तो एक प्रेम पैदा होता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा होती है, और उस भावना से जब उनको न्याय मिलता है या उनके प्रति हम शुभ चिंतन करते हैं तो वो एक सच्चा न्याय हो पाता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर 3 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, और ये 3 शब्द अध्यात्म के बिना पूर्ण नहीं हो सकते हैं। सच्चा जस्टिस तभी हो सकता है जब हमारा मानवता से प्रेम हो, और उसके साथ साथ लिबर्टी क्या चीज है, वो ठीक है कि थॉट्स की, बोलने की, वो सब स्वतंत्रता, लेकिन मन बुराइयों से मुक्त हो तभी सच्ची लिबर्टी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष अनेक विकार हैं जिन्होंने आज इंसान को दुखी अशांत किया हुआ है। आपकी कोर्ट में जितने भी केस हैं, जितनी भी फाइल हैं, उन सबके पीछे इन पांच विकारों में से ही कोई ना कोई विकार है। इसलिए भगवान ने गीता में बहुत सुंदर कहा है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, तीन नरक के द्वार हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, विनाशम आत्मनः, अपनी आत्मा का विनाश कर देते हैं, पतन कर देते हैं। ये तीन मुख्य विकार कामः क्रोधस तथा लोभस, तस्मात एतद् त्रयम् त्यजेत। इन तीन को छोड़ दो, क्योंकि ये तीन बहुत महाबली विकार हैं। वैसे तो पांचों ही विकार बहुत दुख देने वाले हैं, लेकिन काम विकार आज हम देखते हैं समाज के अंदर जितने भी अपहरण के, रेप के केसेज हैं, वो काम विकार के कारण हैं। क्रोध के कारण हम देखते हैं कितने लड़ाई झगड़े, अनेक केस आपके पास आते हैं। और लोभ की तो बात मत पूछो, आज इंसान नीड और ग्रीड के अंतर को नहीं समझ पाता है। आवश्यकताएं तो एक भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन लालच की पूर्ति एक राजा की भी नहीं हो सकती। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि नीड और ग्रीड में क्या अंतर है। महात्मा गांधी जी ने बहुत सुंदर कहा है, मदर अर्थ हैज सफिशियंट फॉर मैंस नीड बट नॉट फॉर मैंस ग्रीड। हमारी इस धरती माँ के पास संपूर्ण संसाधन है जो हर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं हो सकती। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम इन पर संयम कैसे रखें, इन पर अंकुश कैसे रखें। तो ये प्रभाग जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, सबको न्याय देने वाला है, सबको शांति देने के लिए निमित्त है, यदि उनके जीवन में ये आध्यात्मिक मूल्य, नैतिकता जीवन के अंदर आ जाती है, तो सचमुच में वो पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के लिए राजयोगा मेडिटेशन जो सुबह के सत्र में आपको यहाँ तीन दिन तक कराया जाएगा, और उसके बाद भी आप जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ पर थोड़े समय के लिए इस राजयोग को सीखते हैं, मन को उस ईश्वर पिता से जोड़ते हैं, तो अंदर अनेक शक्तियों की प्राप्ति होती है और उससे हमारा मन भी खुश रहता है, तन तंदुरुस्त रहता है, जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं उसके अंदर बहुत मधुरता आ जाती है और हम अपने समाज के लिए बहुत सुखदायी बन सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगी कि इस प्रभाग से जुड़े हुए सभी भाई बहने केवल 15 मिनट सुबह उठने के बाद और केवल 15 मिनट रात्रि को सोने से पहले मेडिटेशन करते हैं, और अपना कोई भी कारोबार करते हैं कोर्ट में, उससे पहले केवल 10 सेकंड शांत मन से उस ईश्वर पिता से शक्ति लेकर के फिर अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन के अंदर महसूस करेंगे। और तब हम इस भारत देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो लहर चल रही है कि फिर से राम राज्य आ जाए, तो राम राज्य क्या है, जहाँ कोई दुखी नहीं है, जहाँ सबके साथ न्याय है, जहाँ सबका चित्त शांत है, तो उस कार्य में ये प्रभाग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और हम भारत की संप्रभुता को फिर से अक्षुण बनाने में बहुत बहुत सहयोग दे सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी बी के लक्ष्मी दीदी का, उन्होंने कितने सौम्य ढंग से बताया और अपने प्रेरणादायी प्रवचन आप सभी के सामने प्रस्तुत किए। आपने बताया वसुधैव कुटुंब की भावना के द्वारा सच्चा न्याय हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे अंदर मानवता की भावना हो। और आप सभी को आह्वान भी किया है कि सुबह उठने के बाद और सोने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है। अभी मैं निवेदन करता हूँ डीके निशा दीदी से, जो कि द्वारका दिल्ली में राजयोग का टीचर हैं और जूरिस्ट विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। बीके निशा दीदी बहुत ही सरल नेचर की हैं, शांत स्वभाव के हैं। आप जो है 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। आपने स्कूलों, कॉलेजों और जेल में कई जीवन को संतुलन करने वाले, जीवन का निर्माण करने वाले सत्र आयोजित किए हैं। आपने शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों के लिए पुलिस स्टेशन आदि में जीवन कौशल के कई कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक किया है। ऐसी अनुभवी टीचर बहन, अनुभवी राजयोगा टीचर बहन आप सभी को अभी मेडिटेशन का अभ्यास करवाएंगे, तो आप सभी रिलैक्स हो जाइए अपने अपने स्थान पर। तो आदरणीय बीके निशा दीदी,
ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा के घर में हमारे मंचासीन सम्माननीय और सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सभी का ईश्वर के द्वारा धन्यवाद भी है और स्वागत भी है कि आज इस विशेष अवसर पर आप सभी यहाँ पहुँचे। और अभी हमने स्व के बारे में बहुत गहराई से सुना कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति एक आत्मा है। आत्मा वो एनर्जी, वो पावर है जिसके आधार पर हमारा ये शरीर कर्म करता है। और आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, क्योंकि शुरू में आप सभी से पूछा था कि आप यहाँ किसके बुलावे पर आए हैं, तो आवाज आई थी सभा में से शिव बाबा ने बुलाया है। तो शिव बाबा जो पॉइंट ऑफ लाइट है और हम उसकी संतान, हम भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं, वो भी प्रकाश स्वरूप है और हम भी प्रकाश स्वरूप है। वो परम धाम के निवासी हैं और हम सब भी वहीं से इस सृष्टि रंग मंच पर कर्म करने के लिए आए हैं। तो अभी हम सभी चलेंगे एक अनोखी यात्रा पर, जिसमें शरीर तो हम सबके यहीं रहेंगे, मन बुद्धि के द्वारा उस पिता से शांति का, आनंद का अनुभव करेंगे। बहुत देर से हम सुन रहे हैं और आंखें खोल कर बैठे हैं। अब हम परमात्मा से बातें करेंगे, उनसे अनुभव करेंगे, तो भी हम आंखें खोल कर करेंगे। सामने आप देख भी रहे हैं परमपिता परमात्मा को, तो आप अपने ध्यान को वहां केंद्रित करेंगे और जैसे जैसे विचार आपको देते जाएंगे, उन्हीं विचारों के साथ अपने मन और बुद्धि को ले चलेंगे। मस्तक के मध्य भ्रुकुटी में विराजमान एक चैतन्य शक्ति स्टार के रूप में चमकने वाली, मैं आत्मा हूं। ये शरीर एक कॉस्ट्यूम है इस सृष्टि रंगमंच पर। ऐसे अनेक कॉस्ट्यूम मैंने चेंज किए हैं। मेरा मूल स्वरूप आत्मा है, शांति मुझ आत्मा की है। ओरिजिनल पावर है। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली, इसकी मालिक हूं। मन बुद्धि को एकाग्र कर मुझ आत्मा के पिता, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जगत नियंता है। मैं उनकी संतान, मुझ आत्मा के पिता, परम धाम के निवासी है। मुझ आत्मा का भी मूल वतन परम धाम है। मन बुद्धि के द्वारा सभी संकल्पों को एकाग्र करके आवाज से दूर, चांद तारों से पार, उस प्रकाश की दुनिया में जहां चारों तरफ सुनहरा प्रकाश प्रकाश, सर्वत्र शांति ही शांति है। शांति के सागर शिव बाबा, उन्हें मैं अपने सामने अनुभव कर रही हूं। शांति के सागर से शांति की लहरें मुझ आत्मा की तरफ आ रही है, और मैं आत्मा शांति के सागर में उसकी लहरों में समाती जा रही हूं। ये शांति की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। मेरे मन के संकल्प शांत हो चुके हैं। कितनी निश्चिंतता है, कितना हल्कापन है। शांति में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख समाया है। इसी अनुभव से मैं अपने आप को अपने ही स्थान पर मस्तक के बीच चमकता हुआ अनुभव कर रही, अपने ही शरीर में मुझे अपने आप में बहुत लाइट फील हो रहा है। शांति के वाइब्रेशन मेरे द्वारा चारों ओर फैल रहे हैं। चारों तरफ शांति ही शांति। ओम शांति शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बीके निशा दीदी का, आपने गहरी शांति का अनुभव करवाया सभी को। मन के संकल्पों को एकाग्र करने की विधि बताई। इस विधि से हम अपने मन को एकाग्र करने के का निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। बाबा ने कहा है संकल्पों का भी एक खजाना है, इसको भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति, शुद्ध संकल्पों की एकाग्रता का ऐसे ही हम अभ्यास करते रहेंगे। अभी एक अनाउंसमेंट है, जो जूरिस्ट विंग के प्रोग्राम में आए हैं वो सभी बैठे रहेंगे, अन्य सभी भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी मैं इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी बीके प्रभा दीदी, जो कि डायरेक्टर हैं ज्ञान सरोवर की, आपको आमंत्रित करता हूं। आप अपने अनुभवों से, अपने उद्बोधन से हम सभी को प्रेरणा देंगे, आशीर्वचन देंगे। दीदी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, आप जो है भरूच सब जोन की डायरेक्टर हैं और वर्तमान में ज्ञान सरोवर की भी डायरेक्टर हैं। आपने भी अपने अनुभवों से अनेकों को प्रेरणा दी है, अपने जीवन से अनेकों को प्रेरणा दी है। ऐसी हमारी दीदी राजयोगिनी बीके प्रभा को मैं आमंत्रित करता हूं, अपने आशीर्वचन हम सभी के समक्ष रखेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विशेष सम्माननीय मंच और इस जूरिस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए मैं यही कहेंगी, शिव पिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संताने, आप सभी विशेष कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि अपने घर में यहां पर पधारे हैं। ये आप सभी आत्माओं का, जो हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव हैं, उस पिता परमात्मा का ये घर है, क्योंकि हम सभी परम पिता परमात्मा को पिता मानते हैं। उसके लिए कहते हैं कि परमात्मा हम सभी के मात पिता हैं। तो जब परमात्मा हम सबका मात पिता है और उसका घर वो हम सबका क्या है, घर है। तो आप सभी आज यहाँ कॉन्फ्रेंस में नहीं पधारे हैं, बल्कि आप सभी अपने घर में पधारे। वैसे भी कहते हैं कि इंसान कहाँ भी जाता है तो उसको वहाँ चैन सुख नहीं मिलता है जितना वो अपने घर में आकर के सुख और चैन प्राप्त करता है। सारी दुनिया घूम के आ जाएगा, लेकिन जब अपने घर में आता है और अपने घर में ही उसको सुकून मिलता है और अपने घर में ही जो खाता है वो पसंद आता है। कहते हैं दुनिया में 36 प्रकार के खा के आएगा, लेकिन अपने घर की जो रोटी है वो सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। तो इसी प्रकार आप सभी आज मैं यही कहेंगी कि आप सभी कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं, बल्कि अपने प्यारे शिव पिता परमात्मा के घर में यहाँ पधारे हैं। तो आप सबका मैं यही कहेंगी कि बहुत बहुत आप सबका यहाँ पर स्वागत है कि आप अपने घर में यहाँ आए हैं और अपने घर में ही हमें सुकून मिलता है। तो आप सभी यहाँ से, अपने घर से सुख और शांति का वर्षा लेकर के यहाँ से जाएंगे, यही मेरी आप सबके प्रति आशा है। अभी विशेष आज शांति शांति के लिए सब कहते हैं कि जीवन में हमको क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर जब वैल्यूज होती हैं तभी हमारा जीवन सुखमय बनता है। आप सभी न्याय के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो न्याय का मतलब ही क्या है कि वैल्यूज, और जहां वैल्यूज होती है वह न्याय भी श्रेष्ठ होता है। तो न्याय के अंदर वैल्यूज है तो श्रेष्ठता है। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी हमें हमारे जीवन के अंदर वैल्यूज चाहिए, और जब वैल्यूज हमारे जीवन में आ जाती है तो जीवन हमारा बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। आज मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हम देखते हैं बहुत प्रयत्न करते हैं, सुख सुविधाएं बनाते हैं, लेकिन जितना जितना मनुष्य अपने जीवन के लिए सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं बनाते जा रहे हैं, लेकिन उतना उतना मनुष्य का जो जीवन है, जो सुख मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, जो चैन मिलना चाहिए, वो मनुष्य को मिलता नहीं है। तो ये जीवन के लिए जो हमारे जरूरी है उसको प्राप्त करने के लिए आप सभी यहाँ पर पधारे हैं। हमारे आगे लता बेन ने कहा कि आत्मा के जीवन के लिए 7 वैल्यूज चाहिए, क्योंकि वैल्यू बहुत जरूरी है, और ये वैल्यूज ना होने के कारण ही आज मनुष्य का जीवन जो है वो अशांत में बन गया है। तो वो जीवन की जो वैल्यूज हैं और वो वैल्यू को हम कैसे प्राप्त करें, यह आपको यहाँ पर विशेष सिखाया जाएगा। जो राज्यों का अभ्यास कराया जाएगा, उस राज्यों के अभ्यास के अंदर यही बताया जाएगा कि कैसे हम अपने जीवन में वो वैल्यूज की शक्ति को धारण करें। जैसे देखो, कोई भी मोटर होती है तो उसको चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है या तो वो चलती है, और अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मोटर क्या करने लगती है, है? वो चल नहीं पाती है, उसको धक्का लगाना पड़ता है। तो वैसे ही जीवन के अंदर भी, ये हमारी जीवन की भी एक गाड़ी है, इसके अंदर भी हमको विशेष पेट्रोल डालना है। वो पेट्रोल कौन सा डालना है? वो राज्यों के द्वारा आप इस जीवन में उस पेट्रोल को भरेंगे तो जिससे आपके जीवन की ये गाड़ी बहुत सुंदर और स्मूथ चलेगी, क्योंकि ये जीवन हमारा बहुत वैल्यूबल जीवन है। इस वैल्यूबल जीवन को हमें वैल्यूबल बनाना है। वैसे भी कहते हैं कि भाई मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूबल होता है, तो मनुष्य जीवन वैल्यूबल है, लेकिन आज का मनुष्य का जीवन क्या बन गया है? कोई वैल्यू ही नहीं रही है। तो मनुष्य जीवन को वैल्यूबल बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने हम सबको ये राज्यों का अभ्यास कराते हैं, जिस राज्यों के अभ्यास के द्वारा ही हम अपने जीवन की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम जीवन में धारण कर सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पर विशेष जो अपना समय निकाल करके अपने घर में आए हैं और यहाँ से विशेष अपने जीवन के अंदर ये वैल्यूज लेकर के ही यहाँ से जाएंगे तो आपका जीवन जो है बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा, और श्रेष्ठ जीवन ही परमात्मा को प्रिय है। परमात्मा जो है वो हमारा सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ है तो हम उसके बच्चे भी क्या होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। तो श्रेष्ठ हम किस आधार से बनेंगे? उस परमपिता परमात्मा जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उस सर्वोच्च परमात्मा से हम अपना संबंध जब जोड़ेंगे तभी हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो विशेष आप सभी अपने जीवन के अंदर यहाँ वैल्यूज लेकर के जाएंगे। मैं ये कहेंगी कि विशेष 3 बातें यहाँ से आप लेकर के जाएंगे, 3 वैल्यूज जिनको अपने जीवन में आप धारण करेंगे तो आपका जीवन बहुत बहुत, ये कहेंगे कि जीवन की गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी। जो आज गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है तो वो धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन की गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी। उसके लिए 3 शब्द हैं, लव, पीस और पेशेंस। तो लव भी चाहिए, पीस भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। लव कौन सा चाहिए? परमात्मा के साथ हमारा प्यार होना चाहिए, हमारा आपसी संबंधों में प्यार होना चाहिए। हम सभी वैसे कहते तो हैं कि भी हम सब भाई भाई हैं, लेकिन कोई भाई भाई हैं? आज भाई भाई कहते हुए भी कितना आपस में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होती है। तो जो सच्चा प्यार हमारा आत्माओं का होना चाहिए, वो सच्चा प्यार जो है वो स्वार्थ में परिवर्तन हो गया है। तो उस स्वार्थ को खत्म करके हम सच्चा प्यार अपने जीवन में लाएं, सच्चा प्यार कि हम सभी आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान है और हम सभी आपस में भाई भाई है। वैसे भी हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम कि हम सब एक ही परिवार के हैं, लेकिन कोई अपने को एक परिवार का समझता नहीं है। तो अब हम सभी उस एक परम पिता परमात्मा की संतान है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये हमारा आपस में लव होना चाहिए और शांति पीस वो हम आत्माओं का स्वधर्म है। उस स्वधर्म में अगर हम स्थित होंगे तो हम अपने जीवन को सुख शांति में बना सकेंगे। और तीसरी बात बेशन धीरज, जो हम सबके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज मनुष्य के जीवन में वो धैर्यता खत्म हो गई है, धीरज खत्म हो गया है। इसीलिए आज क्या होता है, हम देखते हैं कि कितनी कलह कलेश बढ़ती जा रही है। आज परिवारों में लड़ाई झगड़ा, इसका कारण क्या है? धीरज नहीं है, एक दूसरे के ऊपर पेशेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए चारों तरफ लड़ाई और झगड़ा कलह कलेश है। तो ये तीनों जीवन में अगर हम वैल्यूज को धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन बहुत बहुत स्मूथ चलेगा और परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के जीवन के अंदर ये तीन वैल्यूज धारण कराकर हमारा जीवन बहुत तो श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप सब उस शिव पिता परमात्मा की संतान, जो परमात्मा के ये विशेष गुण हैं, आप सब यहाँ से ये विशेष गुण धारण करके यहाँ से जाएंगे। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ आशा है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी बी के प्रभा जी का, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। LLB की डिग्री तो आप सभी ने कर ही रखी है, लेकिन यहाँ से LPP की डिग्री करके जानी है, लॉ पीस और पेशेंस की। जीवन में धैर्य है तो सब कुछ काम हमारे आसान होते जाएंगे। तो धैर्य बनाए रखें, अभी भी कार्यक्रम भी हमारा सुचारू रूप से समाप्ति की ओर है। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हमारी बहनें आपको बताएंगी और अभी आप सबको ईश्वरीय सौगात भी दी जाएगी। तो थोड़ा बैठे रहें। ओम शांति।